الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی چیز اور بہت بڑا مقصد، بہت بڑا ایم یہ ہے کہ اس میں انسانیت آ جائے. جتنے انبیاء آئے وہ انسانوں کو انسان بنانے آئے کہ ان کے اندر انسانیت آ جائے، ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں جس سے انسان دوسرے انسان کے لیے فائدے کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے، راحت کا باعث بنے. اس دنیا میں بہت سے کام مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان مشکل کاموں میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے. اور جو انسان ایکچولی وہ صفات، ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے جو کہ انبیاء لے کے آئے، تو وہ پکا مومن ہوتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایٹیکیٹس ہیں زندگی کے، جو آداب ہیں زندگی کے، ان کا حاصل کرنا بہت اہم ہے. اور سارے دین کا مقصد یہ ہے، حتیٰ کہ جس چیز کو تصوف و سلوک کہا جاتا ہے، جس چیز کو احسان کہا جاتا ہے، اس کی جتنی محنت ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان انسان بن جائے، اس کے اندر وہ ایٹیکیٹس آ جائیں، وہ آداب آ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دیکھنا چاہتے. تو جو نبی کا ادب کرتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا ادب کرتا ہوگا، جو قرآن کا ادب کرتا ہوگا، جو انسانوں کا ادب کرتا ہوگا، جو زندگی میں کام کرتا اس میں اس کے آداب کے ساتھ کرتا ہوگا، تو وہ پکا مومن. ورنہ تو سارے انسان ہیں اور ان میں کلمہ پڑھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن کیوں کوئی شخص اللہ کا محبوب مقرب ہو جاتا ہے؟ وہ صرف ان آداب کی وجہ سے کہ جو کہ انبیاء لے کے آتے ہیں. تو اس لیے اس زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ اپنی کانٹ چانٹ کرتے رہنا چاہیے. جیسے ایک درخت، ایک پودا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے لیکن اس کی شاخیں ادھر ادھر پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی کانٹ چانٹ کی جاتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. اسی طرح انسان کے اندر بھی وقت کے ساتھ، روزمرہ کے ماحول کے اندر، بہت سارے عقائد کے اندر، اس کے عادات کے اندر، اس کے اخلاقیات کے اندر، اس کے بول چال میں، اس کے چلنے پھرنے میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو دیکھتے رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسے وقتاً فوقتاً اپنی کانٹ شانٹ کرنی پڑتی ہے کہ ان غیر ضروری یا جو زائد اس کے اندر عادات یا غلط عادات پیدا ہو رہی ہیں وہ نکلتی جائیں. یہ کنٹینیوس عمل ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کا ایک بار کرنے کا کام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک شخص کو زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو کم ضرورت پڑتی ہے کہ ان عادات کو نکالنا پڑتا ہے، لیکن ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے. تو یہ کنٹینیوس لائف کا عمل ہے. تو اس لیے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ علم ہو، انسان کو پتہ ہو کہ وہ ہیں کیا آداب. اس لیے اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی علم میں اس کو لانا ہے، پھر عمل میں لے کے آنا ہے، پھر پریکٹس میں لانا ہے، اور پھر اس کو اپنی سیکنڈ یعنی کہ کانشیس میں لانا ہے. یہ خود بخود انسان کے کانشیس میں ہو اور انکانشیسلی وہ کام کر رہا ہو. تو اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی محنت ہے، اور وہ کرنے سے ہی آئے گی. اس کو غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ویسٹڈ ٹائم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو पार्ट टाइम भी नहीं, जॉब भी नहीं समझनी चाहिए, और इसको ये भी नहीं समझना चाहिए कि अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं हो सका तो भी कोई बात नहीं, नहीं ये ज़रूरत है ज़िंदगी की। तो उसी सिलसिले में फिर हमने ये सीरीज़ शुरू की कि आदाब ज़िंदगी को कम से कम तस्करे के अंदर लाएं, बात के अंदर लाएं, महफलों के अंदर लाएं, ताकि हमें हमारे वो रिवाइज़ हो जाएं या हमारे इल्म में इजाफा हो जाए कि ज़िंदगी के एटिकेट्स होते क्या हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्बिया लेके आए। आज जो जिक्र करने हैं कुछ एटिकेट्स, वो हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस में यूज़ होते हैं, वो खतूत के ज़रिए हों, लेटर्स के ज़रिए हों, वो ईमेल्स के ज़रिए हों, मैसेजेस के ज़रिए हों, तो उनमें क्या किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर तो कोई ख़त लिख रहा है, लेटर लिख रहा है या ईमेल लिख रहा है, तो उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि अल्लाह का नाम लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। लेकिन इसमें ये बात भी जहन में रहे कि अगर उसे ये अंदेशा है, ये उसकी जहन में है कि ये ख़त ऐसी जगह जाएगा, ये कागज़ ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे इसके वेस्ट होने का वेस्ट हो सकता है या इसको संभालना मुश्किल होगा, तो फिर अल्लाह ताला का नाम लेने में थोड़ा एहतियात करें। अदरवाइज कोशिश, अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर अल्लाह के नाम से शुरू करना सुन्नत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। और फिर सेकंड चीज़ जो लिखनी होती है वो सलाम लिखना होता है, अस्सलाम वालेकुम। और थर्ड चीज़ जो है वो मुखातिब का नाम लिखना होता है कि मुखातिब कि जो कौन है मुखातिब उसका नाम लिखते हैं। तो इस तरह से खत लिखना सुन्नत है, या ईमेल भी ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर अस्सलाम वालेकुम। अगर मुसलमान को लिख रहा है, अगर नॉन मुस्लिम को लिख रहा है तो फिर ना उसको अस्सलाम वालेकुम कहे, फिर कोई और किसी और तरह से ग्रीट कर ले। और थर्डली उसका उसको उसका नाम लिया जा सकता है, उसको एड्रेस किया जा सकता है, और फिर जो बात लिखनी है वो आगे लिख ले। दूसरी चीज़ ये कि ये जो लेटर्स, मैसेजेस, ईमेल्स या जो भी कागज़ होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, तो इसलिए किसी और के लेटर्स या मैसेजेस या ईमेल्स पढ़ना ये जायज़ नहीं है। मतलब किसी का ख़त पढ़ा हो, पता चल जाए, और किसी में सारे शामिल हैं, वो आगे मैं एक्सेप्शन बता दूंगा। तो ये एक प्राइवेट चीज़ होती है और इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है कि दूसरे के लेटर्स को या मैसेजेस को, जैसे मैसेज फ़ोन पे आते हैं उनको पढ़ना या ईमेल्स को पढ़ना अगर मौका मिल जाए तो ये सही नहीं है। और इसी तरह दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, यानी किसी घर जाएं या ऑफिस जाएं, सामने जो लेटर्स पड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, उनको उठा के पढ़ना शुरू कर देना, ये भी सही नहीं, उसकी इजाज़त के बगैर, जिसका ऑफिस है, जिसकी वो ओनरशिप में है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये शरीयत ने इसको बहुत अहमियत दी है और ये गुनाह में शामिल होती हैं कई बार, कि इंसान दूसरे की इजाज़त के बगैर पढ़ ले, और अगर उसका दिल दुखे या उसने कोई प्राइवेट बात जो नहीं बतानी थी, छुपानी थी, वो अगर उसके पता चल जाए तो उसको कितना दुख पहुंचेगा, तो ये गुनाह के अंदर शामिल होती है, तो इसको माइनर नहीं समझना चाहिए। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें तीन दर्जे हैं, यानी कि जब कहा कि दूसरे के लेटर्स या मैसेजेस या ईमेल्स नहीं पढ़ने चाहिए, तो इसमें तीन दर्जे हैं। एक तो ये कि अगर इसलिए पढ़ रहा है कि मैं इसको नुकसान दूंगा या इसकी प्राइवेसी को मैं इंटरफेयर करूंगा, तो तब तो ये हराम है, तब ये गुनाह होगा। और अगर वो बस क्यूरियोसिटी में पढ़ रहा है, यानी कि नुकसान देने का नहीं है ख्याल, वैसे क्यूरियोसिटी है कि क्या लिखा है इसमें, तो इस क्यूरियोसिटी इस तरह से पढ़ना ये एक लव काम है, फजूल काम है, जिसको भी शरीयत ने नापसंद करा दिया। और तीसरा होता है कि जब किसी फायदे के लिए पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लेटर्स या उनके मैसेजेस या उनकी उनके डॉक्यूमेंट्स देखें ताकि नज़र रखें कि वो कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए, इसी तरह कोई उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र रखे या कोई शेख अपने मुरीद के ऊपर नज़र रखे, तो वो अलाउड है क्योंकि नियत सही है। तो ये तीन दर्जे हैं, सिर्फ थर्ड दर्जा अलाउड है, बाकी दोनों दर्जों से बचना चाहिए, यानी क्यूरियोसिटी में पढ़ना या दूसरे के राज मालूम करने के लिए पढ़ना, ये हराम है। अगली चीज ये कि जब किसी को लेटर लिखे, ईमेल लिखे, तो उसका मतलब कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या टॉपिक पूछा जा रहा है, क्या बात की जा रही है। और अगर कोई रिप्लाई रिक्वायर्ड है कि मैं चाहता हूं कि मुझे जवाब दिया जाए उस लेटर का, तो उसमें भी जरूरी है कि उस में क्लियरली मैं लिखूं, मेंशन करूं कि कहां पे मुझे रिप्लाई करना है। ये ना हो कि मैं अपना नाम लिख दूं और फिर मैं ये अंडरस्टूड समझूं कि उसको पता है कि मेरा क्या एड्रेस है और कहाँ भेजना है, हो सकता है वो भूल चुका हो। तो ये बात बहुत, यानी कि एहतमाम करना चाहिए कि अगला बंदा की कोई परेशानी ना हो, यानी इतना भी मेंशन कर दे इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर नीचे एड्रेस लिख दे कि इस पे आपने रिप्लाई करना है। फिर इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी चीज को मेंशन करते हुए, जैसे जुबान यानी गुफ्तगू के टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था, कि ये ना समझे कि इसको पता होगी बात और अधूरी बात लिख दे, बल्कि कोशिश करे कि ये ना समझे कि उसे पता होगी, मैंने पहले बता दिया कि हो सकता है भूल चुका हो, इसलिए थोड़ा सा मेंशन कर दे उस बात को जिसके रेफरेंस से वो अगली बात कर रहे हैं। और उसके लिए हो सकता है कि उसने अगर पहले लेटर में कोई चीज मेंशन की थी तो उस लेटर को अटैच कर दे या उसका रेफरेंस दे दे, अगर उसके ख्याल में ये लेटर उसके पास पड़ा होगा तो उसके रेफरेंस दे दे कि उस लेटर में मैंने आपको ये कहा था, तो ये अब उसके रिलेटेड ये बात है। यानी क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी कोई ना हो। ये बिल्कुल गुफ्तगू की तरह है, लेटर्स मैसेजेस ईमेल एक्चुअली गुफ्तगू की दूसरी फॉर्म होती है, कम्युनिकेशन की दूसरी फॉर्म होती है। तो वो सारे आदाब जो गुफ्तगू में होते हैं उनमें से उनका उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फिर इसी तरह लेटर या ईमेल या कोई मैसेज लेंथी ना हो, कि इतना लेंथी कि अगले को मुश्किल हो जाए उसको रिप्लाई करना या उसको पढ़ना, यानी कि उसको बिल्कुल टू द पॉइंट रखने की कोशिश करें। और उसका एक ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक तरीका ये है कि बहुत सारे मैटर्स को एक में डिस्कस ना करें, मुख्तसर यानी कि कुछ मैटर्स इंपॉर्टेंट मैटर उनको डिस्कस करें, कुछ और को नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें। एक ही लेटर में बहुत सारी चीजें लिख देना अगले को मुश्किल में कई बार डाल देती हैं। इसी तरह कोई अगर बड़ा है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा सलाम किसी को दे दो, ये उसकी रिस्पेक्ट के खिलाफ होता है कि किसी को कह दो कि उसको मेरा सलाम कह देना। अब क्योंकि अब उसको याद रखना पड़ेगा, उसको एक एक जिम्मेदारी आपने दे दी, तो बड़ों को ये नहीं कहा जाता। हाँ छोटे कोई छोटा हो वो उसे कह सकते हैं कि अगले को मेरा सलाम कह देना, बड़ों को ये नहीं कहा जाता कि मेरा सलाम अगले को पहुंचा दे। और पहले जो लेटर्स लिखे जाते थे जो डाक के जरिए पोस्ट ऑफिस के जरिए जाते थे, अब वो कम है लेकिन स्टिल अभी तक है, तो उसमें कई बार इंसान के बेनिफिट की भी बात होती है। यानी कोई क्वेश्चन किसी से पूछा, फॉर एग्जांपल कोई टीचर उसे क्वेश्चन पूछा है, कोई आलिम उनसे क्वेश्चन पूछा है और उसका रिप्लाई चाहिए डाक के जरिए से, तो बेहतर होता है कि उसी लेटर के अंदर यानी कि उस एनवेलप के अंदर एक और लेटर स्टैंप लगा के डाल दे, ताकि उस शख्स को रिप्लाई करने में बहुत आसानी हो, बस वो उसमें जवाब दे और जो इनवेलप साथ आया है उस पर ऑलरेडी स्टैंप लगी होगी उसके अंदर डाल कर भेजे, ना उसके पैसे लगे ना उसको इनवेलप खरीदना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उसमें, उस शख्स का कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो हमारे ऊपर एक एहसान कर रहा है जवाब देकर। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल कर दे अगर लेटर लिख रहा है, अगर ईमेल है तो ऑब्वियसली उसमें इसकी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। फिर इसी तरह इस चीज का ख्याल करें कि यानी कि लेजिबल हो लेटर, हैंड राइटिंग लेजिबल हो, इससे अगले को तकलीफ ना हो, उसे पढ़ने में मुश्किल ना हो और कम्युनिकेट हो जाए बात अगले को। और इस चीज के अंदर भी, यानी कि सिर्फ लेटर्स लिखने की बात हो रही है, तो इस चीज में भी ख्याल रखें कि पेन अपना यूज हो। ये ना हो कि ऑफिस में बैठे है और ऑफिस ऑफिशियल वर्क नहीं है और पेन ऑफिस का यूज कर रहा है, ये चीजें ऑफिस की स्टेशनरी ऑफिस की यूज कर रहा है और काम अपने लेटर लिख रहा है किसी और को, इस चीज का ख्याल रखे, ये अमानत के अंदर आती है। तो अपना पेन हो, जाती पेन हो, जाती कागज हो, फिर अपने जाती काम में यूज करें। ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल स्टेशनरी को ऑफिशियल वर्क के लिए सिर्फ यूज किया जा सकता है। फिर अगली चीज जिसका ख्याल रखना चाहिए वो है कि पेपर को वेस्ट ना करें। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर की दो साइड्स होती हैं, तो अगर तो पेपर अच्छा है, यानी उसकी इंक दूसरी तरफ नहीं, यानी कि उसके निशान जाते और दोनों तरफ लिखा जा सकता है, तो दोनों साइड्स को यूज करें। ये ना करें कि एक पेज के एक साइड पे लिखे, फिर दूसरे पेज की एक साइड पे लिखे, तो दूसरे साइड पे क्यों नहीं लिख रहा? अगर तो खास रीजन है तो और बात है, लेकिन यूजली उसको रूटीन ना बनाए, क्योंकि ये वेस्ट है जो पेपर में शामिल होता है। इसी तरह अगर दो लाइन लिख रहे हैं, तो ये कई उलमा इसका भी ख्याल रखते थे कि नीचे जो हाफ पेपर होता है उसको काट लेते थे, कि वो वेस्ट है, वो उसका कोई यूज नहीं होगा, तो बेहतर है उसको काट के किसी और यूज में ले आए। और ये एक बहुत जबरदस्त आदत है, अगर इंसान इसको अपनी जिंदगी में ले आए, कि वेस्टेज से बचे, हर चीज का यूज ढूंढने की कोशिश करे। जब कोई चीज फेंकने की बारी आए, वेस्ट करने की बारी आए, तो उसको एक दिल में एक तकलीफ हो कि मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूं। फेंकने का मतलब यह है उसका कोई यूज नहीं रहा, तो मैक्सिमम उसका यूज ढूंढने की कोशिश करें कि ये चीज है, इसको मैं क्या यूज कर सकता हूं। और क्योंकि अगर किसी चीज का यूज था, उसको नहीं यूज किया या फेंक दिया, तो वो वेस्टेज में आता है, वो इसराफ में आता है। और इसराफ के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो ऐसा करने वाले शैतान का भाई है। इसलिए उलमा इसका बहुत ख्याल करते हैं कि चीज को वेस्ट ना होने दें। और उसकी एग्जाम्पल जो जहां पे बताई कि वो ये कि लेटर का बैक, यानी कि जो पेज का दूसरा साइड को यूज करना, इसी तरह के पेज में अगर मुख्तसर सी कोई बात है, बाकी आधा पेज बच गया, तो उसको काट के किसी और यूज में ले आना। इसी तरह कई बार प्रिंट्स निकालता है इंसान और वो सही नहीं निकलते, तो अब पेज के दूसरी साइड बची होती है, तो रफ वर्क के लिए उसको रख ले, क्यों? रफ वर्क की जब जरूरत पड़ती है तो कितने दूसरे पेजेस को यूज करता है, तो मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करे पेजेस को या किसी भी चीज को। वेस्ट होते हुए उसे फिक्र होनी चाहिए कि मैं क्यों इसको वेस्ट कर रहा हूं, क्यों फेंक रहा हूं। इसी तरह जो लेटर लिखे या मैसेज लिखे या ईमेल लिखे, उसके अंदर एक चीज इस चीज का भी ख्याल करे कि उस जितने आदाब बोलने के हैं वो उसमें हो। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर झूठ ना हो, उसके अंदर किसी की गीबत ना हो, उसके अंदर किसी की फ्लैटरिंग ना की जाए जिसको लिखा जा रहा है, तो उस सारे जो आदाब हैं बोलने के, गुफ्तगू के, वो उसके अंदर भी अप्लाई होंगे। इसी तरह अगर किसी बड़े को खत लिखा जा रहा है, ईमेल लिखी जा रही है, तो उसके फिर रिस्पेक्ट का ख्याल भी वैसे ही रखा जाएगा जैसे बोलते हुए रखा जाता है, यानी कि उसको एड्रेस करने के लिए एक रिस्पेक्टफुल टाइटल यूज करना चाहिए। और यहां ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जो टाइटल कई बार लगा दिए जाते हैं उलमा के साथ, नाम के साथ, तो उसमें ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल नापसंद भी नहीं करना चाहिए। ये उनका अदब में शामिल होता है, क्योंकि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते थे, और उस अदब में अगर हम गौर करें वो किस तरह का अदब था, कि एक सहाबी रजी अल्लाह तआला नो या एक काफिर जासूस बन के सहाबा के दरमियान आया, और उसने देखा कि सहाबा रजी अल्लाह तआला का क्या रद्द अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उसका मफहूम ये है, ये उसका खुलासा ये है कि उसने देखा कि सहाबा हद से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते। यानी कि उसने कहा कि जब आप थूकते हैं तो थूक जमीन पे नहीं गिरता, कोई हाथ में लेके मल लेता अपने आप को, तो वजू कराने के लिए सारे भागते हैं पानी लेने के लिए, तो इस तरह के उसके कमेंट से। तो उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, अब जो उलमा के जो अंबिया के वारिस हैं, यानी उलमा या असातिज़ा, तो अब उनका भी अदब किया जाएगा। ये जो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करके सिखाया, ये एक्चुअली एक निशानी छोड़ गए कि जिसने इल्म हासिल करना हो वो इस तरह के अदब से गुजरे। इसलिए जितने हमारे हिस्ट्री के, इस्लामिक हिस्ट्री के बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने अपने साथ के ऐसे ही अदब किए, और तभी उन्होंने वो इल्म को पाया है। तो अदब एक बहुत अहम चीज है, इसीलिए सारी आदाब की बात हो रही है कि दीन आता ही उसके अंदर है जिसके अंदर अदब होता है, और वो क्या लेके आता है, वो उसके अदब को और बढ़ा देता है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आदाब अदब देख के बड़ों का कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि क्यों अदब किया जाता है इनका, तो ये बात जहन में रहनी चाहिए। उससे अदब इसलिए किया जाता है, वो खुद नहीं चाहते मेरा अदब करें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि कोई मेरे लिए खड़ा हो महफिल के अंदर। लेकिन जो अदब किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, छोटों की तरफ से किया जाता है बड़ों का, या स्टूडेंट्स की तरफ से अपने टीचर्स का अदब किया जाता है। तो ये दीन का पार्ट है। अगर हम अपने जो इस्लामिक हिस्ट्री के उलमा को या सहाबा रजी अल्लाह तआला या ताबीन उनकी जिंदगी देखें, तो हम तो उसका बिल्कुल अशरशीर भी नहीं होंगे अदब में, लेकिन इस चीज की फिक्र होनी चाहिए कि क्यों नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल अदब, कि वो कितना अदब करते थे अपने बड़ों का। जितना बात हम पढ़ते रहते हैं कि सहाबा जब बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो अपना सर नहीं हिलाते थे, यानी हिलते ही नहीं थे अदब की वजह से। तो ये उनकी रिस्पेक्ट थी इल्म की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट हमारे अंदर आना चाहिए कि कम से कम बात गौर से सुनना, या बात को सुनते हुए उस कुछ दीन के इल्म का मैनर्स का ख्याल करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और खास तौर पर दीन का इल्म हासिल कर रहा हो उसको इन सारी चीजों का ख्याल करना चाहिए। तो जो बातें असातिज़ा के आदाब में मैंने बता दी थी वो गुजर चुकी हैं, इसी तरह इल्म के आदाब में बताई थी, वो सारी चीजों की इंपॉर्टेंस है। तो बात ये हो रही थी कि जब एड्रेस करे लेटर के अंदर बड़े को, तो उसका कोई अदब का एक टाइटल साथ लगा दे, और जिस तरह बोलते हुए ना बहुत मुख्तसर बोलना चाहिए कि अगले को समझ ना आए, ना बहुत लेंथी बोलना चाहिए कि अगला उकता जाए, इसी तरह लेटर के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अगर पहली बात तो ये कह दी कि एक लेटर में एक टॉपिक को ही अगर एड्रेस करें तो बेहतर है, लेकिन अगर कई टॉपिक्स एड्रेस करने हैं तो उनको उनको क्लियर रखे, मतलब कि पैराग्राफ्स की सूरत में या पॉइंट्स की सूरत में, पता चले कि कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कि मिक्स ना हो रहे हैं आपस में, बल्कि क्लियर हो कि पहला ये मैसेज है, दूसरा ये बात है, तीसरी ये बात है। इसी तरह एक और चीज का जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये कि जिसको खत लिखा जा रहा है, ईमेल लिखी जा रही है, मैसेज लिखा जा रही है, उसकी लैंग्वेज का पता हो कुछ, मतलब कि कई लोग इंग्लिश को इजीली इजीली एक्सेप्ट करते हैं, इजीली उन्हें समझ आती है, कई लोग उर्दू में इजीली बात को समझते हैं, तो जो लैंग्वेज अगले के लिए अंडरस्टैंडेबल है उसमें बात करने की कोशिश करें। और हर चीज जिस तरह बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, इसी तरह हर चीज लिखने से पहले भी सोचना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्या बात लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और ये एक बहुत जबरदस्त आदत है कि इंसान के अंदर आ जाए, बोलते हुए भी और लिखते हुए, कई चीजों से इंसान बच जाता है जिंदगी की मुश्किल से। तो इसी तरह अगर लेटर है उसको एनवेलप में डालना है, तो उसमें भी देखें कि एक सलीके से डालें कि ऐसा ना हो कि वो जब उसको बंद करे तो सारा गम उसके लेटर पे लग जाए, वो खोलते हुए वो लेटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, फट जाए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ये भी एक अदब है, क्योंकि अगले को मुश्किल से बचाया जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के दौर में वो है खास तौर पे फेसबुक के हवाले से, इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी समझा कि उसके यूज को इंसान कोई अहमियत नहीं देता, हालांकि उसका यूज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को लेटर लिखना, जैसे अपनी जुबान से कोई बात निकालना। मतलब ये कि जो कुछ मैं वहां लिख रहा हूं फेसबुक के ऊपर या जो भी मैं शेयर कर रहा हूं उसको उसका मैं अकाउंटेबल हूं, उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा कि ये क्यों लिखा, ये क्यों किया। तो क्या मैं ऐसा करता हूं कुछ लिखने से पहले, कुछ शेयर करने से पहले कि इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे? अगर मुझे अकाउंटेबल ठहरा दिया गया, मुझसे पूछ ले ये क्यों लिखा, तो मैं इसको किस कैटेगरी में लिखूंगा रखूंगा कि ये जरूरी था, ये मैंने ऐसे ऐसे बिलावजह कर दिया या मैंने हराम काम कर दिया, तो वहां मैं उस चीज का अकाउंटेबल हूं। क्योंकि कई बार ऐसे फील होता है कि इंसान ये नहीं समझता, वो उसको समझता है कि ये तो ऐसी ही एक एक्टिविटी है, इसमें इसके बारे में मुझसे कोई पूछेगा नहीं, कोई मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब भी कोई चीज लिखे या फेसबुक पे उसको शेयर करे, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये कि कई बार इंसान किसी कॉम के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कुछ शेयर कर रहा होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि उसके बारे में क्या लिमिट्स हैं। तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी कौम दुनिया की या ग्रुप आमतौर पे 100% सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर 70 खूबियां होंगी तो 30 बुराइयां होंगी, और एक दूसरी कौम है उसके अंदर भी हो सकता है कि 70 खूबियां हों, 30 बुराइयां हों। अब हो सकता है मेरा ताल्लुक किसी एक कौम से हो, दूसरे का ताल्लुक किसी दूसरी कौम से। आमतौर पे होता ये है कि ये शख्स, एक शख्स अपनी कौम की खूबी देखता है, यानी जो 70 है, और दूसरे कौम की जो 30 बुराई है उनको देख रहा होता है और उनको हाईलाइट कर रहा होता है। हालांकि उस कौम, दूसरी कौम के अंदर 70 खूबियां भी थी, लेकिन उसने उसको तो इग्नोर कर दिया और 30 नाखामियों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और बिल्कुल यही रद्द अमल वो दूसरी कौम शो करती है पहले की, कि वो उसकी 30 खामियों को हाईलाइट करती है और अपनी 70 खूबियों को हाईलाइट करती है। कहने का मतलब ये कि अपनी खामियों को कोई नहीं बताता, या उसको इग्नोर कर रहा होता है और अगले की खूबियों को इग्नोर कर रहा होता है। तो ये एक बहुत खतरनाक आदत है, उसी से कौमें डिवाइड हो जाती हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैसेज लेके आए, वो और जो अरब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत की, वो यही बात समझाई कि देखो, ये चीज कौमें कोई चीज नहीं होती, ग्रुप्स कोई चीज नहीं होते, असल ये है कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक्चुअल फैक्ट क्या है कि 70 जगहों पे वो सही है और 30 जगहों पे हम गलत हैं, यानी कि फैक्ट्स को माने, जो हकीकत है उसको माने, इसको अदल कहते हैं, यानी कि अदल पे रहना। क्योंकि कुरान पाक ने ये क्लियर कट मेंशन किया है कि कहीं तुम्हें किसी कौम के मफहूम है, किसी कौम की मोहब्बत को तुम्हें अदल से ना हटा दे। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिससे कौमें और मुसलमान इवन डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इस तरह बैलेंस रहना, रखना अपनी सोच को, बैलेंस रखना अपने एटीट्यूड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरी तरफ ना टिल्ट ना हो जाऊं कि दूसरे की खामी को हाईलाइट करता रहूं, अपनी खूबी करता रहूं, अपनी खामी में को इग्नोर करूं, यानी कि कोई कहे तुम्हारे अंदर ये खामी, मैं कहूं नहीं ये खामी, तो ये इसका मतलब मैं बैलेंस में नहीं रहा हूं, वरना मुझे एडमिट करना चाहिए हाँ ये खामी है, और ये एडमिट करना चाहिए दूसरे के अंदर ये खूबी है। ऑल दो नेचुरली एक बंदा एक तरफ ही टिल्ट होता है, या एक ही ग्रुप का होता है, या एक ही कॉम का होता है, लेकिन इस तरह बैलेंस में रहना ये जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत पेश की गई जिसने चोरी की, तो कई सहाबा आ गए उसकी सिफारिश के लिए कि ये इसको माफ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा आ गया और ये कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसका भी हाथ काटता। बात ये नहीं कि वो मेरी फैमिली से है या मेरी कॉम से है या किस कॉम से है, बात ये है कि उसने किया क्या है, बात ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। तो ये ऐसी कमजोरी मुस्लिम उम्मा में पैदा हो रही है कि जो एक खतरनाक हद तक बढ़ रही है। इसलिए ये मैसेज आम करना चाहिए कि अदल पे रहे, कि हाँ सही बात को सही कहने की आदत, गलत बात को गलत कहने की आदत, बेशक वो मेरे अंदर हो, बेशक वो किसी और के अंदर हो, और उसका मकसद अच्छा हो, गलत बात को इस अंदाज से पेश किया जाए कि उसकी इसलाह हो जाए। मतलब ये कि अगर गलत बात को इस तरह पेश किया जाए कि अगले का दिल टूट जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। कितना मैंने बताया कि जितना कुछ हम लिखते हैं, जो शेयर करते हैं, जो कुछ हम बात करते हैं उसमें ये जरूरी ख्याल रखना होता है कि अगले का दिल ना टूटे, अदरवाइज गुनाह है। तो क्या मैं हर चीज कहने से पहले, लिखने से पहले, फेसबुक में शेयर करने से पहले ये चीजें सोच रहा होता हूँ या नहीं सोच रहा होता? अगर नहीं सोच रहा तो इसका मतलब है मैं अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझ रहा। तो ये अहम चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बार एक सहाबी को जो हिजरत कर रहे थे, और हिजरत करते हुए उनको कुफार ने रोक लिया और कहा कि आप गज़वे बदर होने वाला है तो आप वहां जाके मुसलमानों की हेल्प करेंगे, तो हम नहीं आपको जाने देंगे। तो इन्होंने वादा किया कुफार से कि हम उस गज़वे में शरीक नहीं होंगे, आप हमें जाने दें। उन्होंने जाने दिया। आगे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, अभी जा रहे थे रास्ते में गज़वे पे, तो आप सल उन्होंने पूरा माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये माजरा है, हमें आने नहीं दे रहे थे कि हम गज़वे में शरीक होंगे, तो हमने वादा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वादा कर दिया, आप नहीं शरीक हो सकते। यानी कि उधर मुसलमानों की कुव्वत 313 है, कम है, पता है कि आगे बहुत सख्त मुकाबला है, लेकिन जब वादा किया तो कहा कि अब ये वादा नहीं टूट सकता, अब तुम नहीं शरीक हो, और नहीं शरीक किया उसको। तो इस तरह से एक हकीकत पसंद, एक इंसाफ पसंद, एक अदल पसंद इंसान होता है मोमिन। ये क्वालिटी इंसान को पैदा करने की, और ये हर लेटर, हर बात, हर जुमले और हर चीज जो भी मैं शेयर करता हूं उसमें इस चीज का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं अकाउंटेबल हूं, मैं सोचूं कि मैंने तो कोई 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 गुनाह किया नहीं, तो ऐसी बात नहीं। ये गुनाह में ही इंसान के शुमार होता है, मोमिन के शुमार होता है। तो एक बार एक बुजुर्ग के पास एक शख्स ने लेटर लिखा, एक वाक्य सुना के बात अपनी खत्म करता हूं। और उसने लिखा कि मैं आपसे बैत होना चाहता हूं, इस्लाह के लिए आपसे ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। और इस लेटर को लिख के, यानी पहले उस दौर में खत ही होते थे, तो खत लिख के वो भेज दिया। अब ऑब्वियसली बात मुख्तसर थी, कागज बड़ा था, तो निचला कागज भी वेस्ट हुआ है, बैक साइड भी वेस्ट हो रही है। तो उन्होंने जब पोस्ट किया और उन्हें मिला, तो उन्होंने पहली बात उन्हें ये लिखी कि बैत तो बाद की बात है, आपने कागज क्यों वेस्ट किया है? यानी कि अगर आपको ये यूज नहीं करना था तो इसको उतार लेते, नीचे वाले कागज को, यानी फाड़ लेते। तो ये लिख के उन्हें जवाब वापस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी इसी बात से मेरी इसलाह हुई, मतलब कि अब तो मैं जरूर आपसे बैत करूंगा, क्योंकि आपकी ये बात ने ही मुझे तरीका जिंदगी गुजारने का बता दिया कि किस तरह जिंदगी गुजारी जाती है, फूक फूक के, कि मेरे जहन में ये ख्याल भी नहीं था कि ये भी वेस्टेज है, इसराफ है। तो मेरी जिंदगी में न जाने कितने इसराफ होंगे, कितनी जिंदगी वेस्ट हो रही होगी, तो मैं अब आपसे जरूर ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। तो इस जो उलमा सुलहा और औलिया थे इस चीज का ख्याल करते थे, इन सारी आदाब का। हमें भी जरूरत इस चीज़ की है कि इन आदाब को सीखें, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें और दूसरों तक तो पहुंचाएं, कि ताकि देखिए आदाब का सारा बेसिक थीम क्या है, क्यों आदाब सीखे जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो जो मकसद होता है वो ये कि अगला तकलीफ से बच जाए। क्योंकि हम मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, हमें अगर एटिकेट्स का ख्याल नहीं करेंगे हम तकलीफ दे रहे होंगे दूसरे। और अगर मुझे नहीं एटिकेट आते तो मैं कई बार अपनी तरफ से कहूंगा मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, हालांकि मैं दूसरे को तकलीफ दे रहा हूँ और बिल्कुल अदब के खिलाफ कर रहा हूं। तो इसलिए ये मुआशरे की जरूरत है कि हर इंसान एटिकेट्स वाला हो, उसे पता हो कि क्या अदब है, क्या इस चीज को कैसे करना है। अगर उसे उस चीज को करना आ गया, बोलना आ गया, बात करना आ गया, लिखना आ गया, एक दूसरे से डील करना आ गया, तो बस मुआशरा वैसे सुकून सुकून का एक नमूना होगा, मोहब्बतों का नमूना होगा, क्योंकि अफराद एक दूसरे को सुकून दे रहे होंगे। हर कोई एक फिक्र ये होगी अगले को तकलीफ ना हो जाए, मेरी बात से, मेरे अमल से, मेरे एक्ट से, मेरी मेरी सोच से, मेरी किसी किसी एटीट्यूड से। तो जब हर बंदा इस चीज़ की फिक्र में होगा, और चलो 100% नहीं इंप्लीमेंट होगा, 80% इंप्लीमेंट हो जाए, 70% इंप्लीमेंट हो जाए, फिर 60% इंप्लीमेंट हो जाए, तो उससे ही कितने मसले माशरे के हल हो जाएंगे। लेकिन ये मेहनत के बगैर नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत की, इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए मेहनत की, इसके लिए एफर्ट्स की, एक दूसरे को बताया गया तब ये बात माशरे में आम हो, अदरवाइज ये खुद ब खुद तो नहीं आम होगी। कि कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो अगर उसे ना सिखाया जाए एटिकेट्स क्या है, उसे क्या पता एटिकेट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। जब हम हर फील्ड में सोचते हैं कि इसमें ट्रेनिंग की होती है, इसमें ट्रेनिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं कि वो एक बंदा एक्सीलेंस हासिल कर ले उस फील्ड के अंदर, तो कैसे एक इंसान सही तौर पर इंसान या मोमिन बन सकता है विदाउट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग करना ही अम्बिया का, और अम्बिया के बाद अम्बिया के वर्सा उलमा औलिया और सुलहा के जिम्मे हैं, और इसीलिए उनके पास जाया जाता है कि वो हमारी ट्रेनिंग कर दें, हमें ट्रेन कर दें कि हमें जिंदगी गुजारनी कैसे। तो ये जो वीकली लेक्चर्स होते हैं या वीकली जो सिटिंग्स होती हैं, उसका मकसद यही होता है। ये सिर्फ कोई स्वाब के लिए या सिर्फ वक्त कुछ वक्त गुजारी के लिए या इसलिए नहीं किए जाते, बल्कि एक पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक्चुअली, कि इकट्ठे होके कोई बात इंकल्टेट की जाए दूसरे पर्सन के अंदर, कोई बात बताई जाए, उससे बताने वाले का भी फायदा हो, सुनने वालों का भी फायदा हो। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट जिंदगी का एक काम समझना चाहिए कि जिस तरह मैं और चीजों में ट्रेनिंग हासिल करता हूं, तो इसलिए अब जिंदगी गुजरती जा रही है, तो मैं क्यों ना जिंदगी गुजारने के बारे में भी ट्रेनिंग हासिल करूं। तो अल्लाह ताला हमें जिंदगी के आदाब सिखा दे, उस पर अमल पैदा कर दे। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, जो कुछ दुनिया में है उसे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। कल्बी जिक्र को कहते हैं। जिक्र दो तरह से होता है, जुबान से और कल्ब से। जुबानी जिक्र हमें पता है जैसे तस्बीहात वगैरह, तो कल्बी जिक्र जिससे ये है कि ना जुबान से कुछ पढ़ता है इंसान, ना सांस से कुछ करता है, बस सोचता है कि मेरा कल्ब अल्लाह को याद कर रहा है। और क्या याद कर रहा है? वो कुरान ने बताया, वस्बुर इस्म रब्बिक, कि अपने रब के नाम को याद करो, और अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, तो उसको याद करता है। तो सोचना यह है कि मेरा कल्ब जो सीने में है वो अल्लाह 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 कह रहा है, बस सोचना है और कुछ नहीं करना। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला की अनवारात कल्ब पे आते हैं और कल्ब साफ हो जाता है, और ये सुनी हुई बातें फिर अमल का हिस्सा इजीली बन जाती हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी सोच को अपने कल्ब पे मरकूज़ कर लो। La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dua kıl. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve barik ve sellem. La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu minez zalimin. Ya Allah pak, aap hi dono jahanon ke malik hain, khalik hain, tamam tareefein, tamam badhaiyan, tamam nisbatein, tamam khoobiyan, tamam achhaiyan, tamam paakiyan aapke liye hain. Ya Allah pak, aapne hum pe ehsaan farmaya ke ya Allah pak, aapne hame Huzur sallallahu alaihi wasallam ke zariye se Quran diya. Ya Allah pak, zindagi guzarne ka mukammal ek laaye amal de diya. Ya Allah pak, ایک ایک چیز ایک ایک باریکی یا اللہ پاک زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمیں نصیب کر دی. یا اللہ پاک, اگر یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں یا اللہ پاک, یا اللہ پاک در بدر ٹھوکر کھا رہے ہوتے. یا اللہ پاک, نہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کیسے کوئی چیز کھانی ہے. یا اللہ پاک, کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. یا اللہ پاک, کسی چیز کا ہمیں علم نہ ہوتا, ہم ظاہر میں بھی ناپاک ہوتے, باطن میں بھی ناپاک ہوتے. یا اللہ پاک, آپ نے پورا ایک پورا انتظام کر دیا کہ ہمیں ظاہر پہ بھی پاک کر دیں اور باطن میں بھی پاک کر دیں. یا اللہ پاک, آپ کی طرف سے حجت تمام کر دی گئی. یا اللہ پاک, کمزوری ہماری طرف سے ہوئی. یا اللہ پاک, سستی ہماری طرف سے ہوئی کہ یا اللہ پاک, ہم نے آج تک اس چیز کے لیے وقت نہ نکالا, اس کے بارے میں سوچا نہیں, اس کو سمجھا نہیں. یا اللہ پاک, آپ اپنی رحمت سے ہماری غفلت و کوتاہی کو معاف فرما دیں. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, اب بھی یا اللہ پاک, ہمارے قلب کی آنکھیں کھول دیں. یا اللہ پاک, ہماری زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دیں. یا اللہ پاک, ہمیں زندگی کا آداب سکھا دیں. یا اللہ پاک, ہمیں اپنی رحمت سے بولنے کا آداب سکھا دیں, سوچنے کے آداب سکھا دیں, دیکھنے کے آداب سکھا دیں. یا اللہ پاک, ایک دوسرے سے لین دین کرنے کے آداب سکھا دیں, عبادات کے آداب سکھا دیں. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ, زندگی کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے گوشے کے آداب سکھا دیں. یا اللہ پاک, ہماری زندگی کو سنوار دیں اور پھر ہماری زندگی کو پسند کر لیں. یا اللہ پاک, آپ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے موت زندگی بنائی اس لیے کہ دیکھ لوں کون اچھے عمل کرتا ہے, احسن عمل کرتا ہے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہمیں احسن عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک, ہمیں یا اللہ پاک, عمل کو بگاڑنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک, عمل نہ کرنے سے بھی محفوظ فرما اور عمل کو بگاڑنے سے بھی محفوظ فرما. اپنی رحمت سے یا اللہ, ہماری زندگی کے ہر عمل کو سنوار دے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, ہمیں محبتوں والی زندگی نصیب فرما, معاشرے کے اندر محبت کو عام فرما, ایک دوسرے کے رسپیکٹ کو عام فرما, ایک دوسرے کے یا اللہ پاک, حقوق ادا کرنے کو عام فرما. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, ہمیں پوری مسلم امہ کے معاشروں کو یا اللہ پاک سکون کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاک, ہمیں اس سکون کو پھیلانے کے لیے قبول فرما, ان آداب کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قبول فرما. یا اللہ پاک, ان آداب کو پھیلانے والا بنا. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے جو گناہ ہو گئے یا اللہ پاک, کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے, اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما. یا اللہ پاک, جو گناہ دن میں کیے معاف فرما, راتوں میں کیے معاف فرما. یا اللہ پاک, تنہائیوں میں کیے معاف فرما, محفلوں میں کیے معاف فرما. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, گناہوں کی عادتوں سے ہماری جان چھڑا. یا اللہ پاک, گناہوں کی دلدل سے ہمیں نکال دے. اور یا اللہ پاک, طاعت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہمیں بھی وہ زندگی کی زندگی یا اللہ پاک دکھا دے کہ جس میں گناہ نہ ہوں. یا اللہ پاک, کتنے اولیاء گزرے, کتنے یا اللہ پاک نیک لوگ گزرے جنہوں نے سال ہر سال کوئی گناہ نہ کیا. یا اللہ پاک, نہ ان کی آنکھ نے غلط دیکھا, نہ ان کی زبان نے غلط بولا, نہ ان کے کانوں نے غلط سنا. یا اللہ پاک, ہمیں بھی ایسی زندگیاں نصیب فرما. یا اللہ پاک, یقیناً جو بھی زندگی کے اندر ہمارے مسائل ہیں یا اللہ, وہ ذاتی ہوں یا قومی ہوں, یا اللہ پاک, یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک, ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما. یا اللہ پاک, ہمیں صحیح رخ یا اللہ پاک نصیب فرما, ہمارے ذہن کی کنفیوژنس کو دور فرما. یا اللہ, سستی اور کاہلی کو دور فرما. یا اللہ, غفلت کو دور فرما. یا اللہ پاک, ایسی مصروفیت کو دور فرما کہ جس کی وجہ سے ہم یا اللہ پاک کوئی کام کر نہ سکیں, تیری یاد کر نہ سکیں. یا اللہ پاک, ایسی ہر مجبوری سے ہمیں محفوظ فرما جو تجھ سے دور کرنے والی ہو. ایسی ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما جو تجھ سے دور کرنے والی ہو. ایسی ہر مشکل سے ہمیں محفوظ فرما جو تجھ سے دور کرنے والی ہو. یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما, عافیت و ایمان والی موت نصیب فرما, عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما, اور یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما, حشر فرما کر ہمیں بلا حساب بلا استحقاق بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک جو ہمارے دوست ہیں, یا اللہ پاک ایک ڈاکٹر صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ پاک اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, یا اللہ پاک جو مال کی وجہ سے پریشان, یا اللہ ان کو اس کے حلال نصیب فرما. یا اللہ پاک جو صحت کی وجہ سے پریشان ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان اپنی رحمت سے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد ہے یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان کمزور اور پریشان ہیں اپنی رحمت سے سب کی دستگیری فرما. یا اللہ پاک ظالموں کے چنگل سے ان کو نکال, اور یا اللہ پاک ہمیں ساری عمر ظالموں کے حوالے نہ فرما, ظالموں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں یا اللہ پاک دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرما, اور ہمیں ہم پر ظلم ہونے سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ پاک جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو قبول فرما, اور یا اللہ پاک ہماری اصلاح فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا رب.